ये आकाशवाणी है। अब आप नेहा गोस्वामी से समाचार सुनिए। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती आज होगी। इन राज्यों के साथ ही 15 राज्यों में 48 विधानसभा उपचुनावों तथा 2 लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए भी मतगणना की जाएगी। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। उत्तर प्रदेश के 9, राजस्थान के 7, पश्चिम बंगाल के 6, असम के 5, बिहार और पंजाब के 4-4 और कर्नाटक के 3 तथा केरल, मध्य प्रदेश और सिक्किम के 2-2 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराए गए थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़, गुजरात, मेघालय और उत्तराखंड में भी 1-1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है। केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र और महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव कराए गए हैं। ये उपचुनाव इस महीने की 13 और 20 तारीख को हुए थे। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गणना आज होगी। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि राज्य के जिला मुख्यालयों में 24 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में आज कड़ी सुरक्षा के बीच 9 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना होगी। 20 नवंबर को राज्य की कटहरी, करहल, मीरापुर, कुंदरकी, फूलपुर, सीसामऊ, गाजियाबाद, मझवा और खैर विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। 11 महिला समेत 90 उम्मीदवारों के राजनैतिक भाग्य का फैसला आज होगा। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मतगणना केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने बताया है कि कानपुर जिले की सीसामऊ सीट के लिए लगभग 20 राउंड में मतगणना होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार की अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत दिल्ली की कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस के साथ एक बैठक में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इसमें केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, दिल्ली पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री शाह ने कहा कि दिल्ली वासियों को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कराना प्रत्येक पुलिसकर्मी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी की नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना की 3 देशों की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपनी 3 देशों की यात्रा के दौरान 31 द्विपक्षीय बैठकों और वैश्विक नेताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नाइजीरिया में एक द्विपक्षीय बैठक, ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 10 द्विपक्षीय बैठकें और गयाना में 9 बैठकें की। ब्राजील में द्विपक्षीय बैठकों में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्रिस स्टार्मर, चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली बैठक थी। नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना की अपनी यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ देश के सभी कोनों से अनोखे उपहार लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि दुनिया का हर देश विकास के लिए भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है। वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हर क्षेत्र के लिए नई नीतियां बनाई है और 21वीं सदी में तेजी से विकास हासिल करने के लिए खुद को तैयार किया है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने कारोबार को आसान बनाने के लिए लाल फीताशाही को खत्म किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ओडिशा के इतिहास का कलिंग युद्ध अध्याय दुनिया को शांति का पथ दिखाता है। कल शाम नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 3 दिवसीय ओडिशा पर्व कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कलिंग युद्ध ने चंड अशोक को धर्म अशोक में बदल दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया के कुछ हिस्से आज संघर्ष का सामना कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से स्नेह और सद्भाव के साथ रहने का आग्रह किया। पर्थ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 7 विकेट पर 67 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी भी 83 रन से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। All preparations are in place for the counting of votes today for the assembly elections in Jharkhand and the Maharashtra, along with by-elections in 48 assembly seats in different states and parliamentary constituencies of Wayanad in Kerala and Nanded in Maharashtra. The counting will commence at 8 in the morning and results are expected to start coming around noon. Postal ballots will be counted first. Elaborate arrangements have been made by the Election Commission for smooth conduct of the counting process. In Jharkhand, 81 seats went to polls in the state in two phases on 13th and 20th of this month. The Election Commission has made elaborate arrangements to ensure peaceful counting for all 81 assembly seats. Three-tier security arrangements have been made at each counting centre. Prime Minister Narendra Modi has successfully concluded his three-nation visit to Nigeria, Brazil and Guyana. The Prime Minister whirlwind tour was marked by a hectic flurry of bilateral meetings in the three countries. Mr. Modi participated in 31 bilateral meetings and informal interactions with global leaders during his three-nation tour. During the visit, Mr. Modi held a bilateral meeting in Nigeria, 10 bilateral meetings on the sidelines of the G20 summit in Brazil, and 9 such meetings in Guyana. Our correspondent reports that in his visit to Nigeria, Brazil and Guyana, PM Modi carried with him unique gifts from all corners of the country. President Draupadi Murmu has emphasized the need to adopt nation-first approach by all citizens to become a developed country. The president was addressing the gathering after inaugurating the fourth edition of Lok Manthan, a unique cultural exchange event in Hyderabad yesterday. President Murmu recalled that efforts have been made for centuries to divide and weaken the Indian society. She listed out the recent measures taken by the government to strengthen the age-old concept of democracy in the country. Four-day Lok Manthan serves as a platform for dialogue, reflection and cultural exchange, spotlighting global tales of resilience and perseverance. Prime Minister Narendra Modi has said that today India is the fastest growing economy in the world. He said every country of the world wants to have partnership with India for development. In a video message at an event organized by a media house, the Prime Minister said that India has made new policies for every sector and prepared itself to achieve rapid growth in 21st century. Mr. Modi said that his government has brought an end to red tapism to promote ease of doing business. Home Minister Amit Shah has said that the government has a policy of zero tolerance against crime and any kind of laxity in the law and order situation of Delhi is not acceptable. The Home Minister held a meeting with Delhi police yesterday and reviewed the law and order situation. Union Home Secretary Govind Mohan, Intelligence Bureau Director Tapan Deka, Delhi Police Commissioner and other senior officers were present at the meeting. Mr. Shah pointed out that it is the personal responsibility of each and every policeman to make Delhiites feel completely safe. He added that the safety of children, women and senior citizens should be the priority of Delhi Police. The Ministry of Civil Aviation has advised airlines to provide facilities to passengers during flight delays. In a social media post, the ministry asked airlines to provide drinking water for delays of up to 2 hours. The ministry added that tea or coffee with snacks and refreshments will be provided to passengers for delays between 2 to 4 hours and meals for delays exceeding 4 hours. The Ministry of Civil Aviation said that these measures are designed to prioritize passenger convenience during unforeseen disruptions. In cricket, Australia was 67 for 7 in their first innings against India at stumps on day 1 in the opening test match of the Border Gavaskar Trophy in Perth. Jasprit Bumrah led India's fight back from the front with 4 wickets on day 1. Earlier, India got off to a weak start and were bundled out for 150 runs.